एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही दो बिल्कुल अलग तस्वीरें जहन में आती हैं। एक तरफ तो गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया का एक बड़ा नाम, और दूसरी तरफ जिंदगी के हर पल को जी लेने की बात कहने वाला एक शायर। हम बात कर रहे हैं उमर खयाम की।
उमर खयाम, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जिसके साथ विज्ञान की सटीकता भी है और वो दार्शनिक संदेह भी।
हाँ,
पूरा नाम तो खैर काफी लंबा था उनका, गियात अद्दीन अबू अल्फत उमर बिन इब्राहिम अल खयामी अल निशापुरी।
अरे बाप रे।
हाँ, लेकिन दुनिया उन्हें उमर खयाम के नाम से ही जानती है। समय था उनका 11वीं-12वीं सदी।
अच्छा।
मतलब करीब 1048 से 1131 ईस्वी के आसपास, फारस के निशापुर शहर में।
फारस यानी आज का ईरान, और निशापुर उस जमाने में तो वो सेल्जुक साम्राज्य का एक बड़ा गढ़ था ना, है? मतलब संस्कृति और ज्ञान का केंद्र।
बिल्कुल बिल्कुल। तो खयाम सिर्फ शायर नहीं थे, वो तो जिसे कहते हैं बहुज्ञ थे, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और फिर जाके कवि।
यही बात तो सबसे दिलचस्प लगती है कि एक ही इंसान इतनी अलग अलग चीजों में माहिर।
हाँ,
कैसे, मतलब कैसे कोई ब्रह्मांड के नियमों को इतनी बारीकी से समझ सकता है, और साथ ही उसी ब्रह्मांड की जो अनिश्चितता है, जो रहस्य है, उस पर इतनी खूबसूरती से लिख भी सकता है।
यही यही तो उमर खयाम का सबसे बड़ा आकर्षण है। आप सोचिए, एक तरफ वो त्रिघात समीकरण, मतलब क्यूबिक इक्वेशंस,
हाँ,
उनको हल करने के लिए ज्यामिति का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उस वक्त के हिसाब से मतलब बहुत आगे की चीज थी।
जबरदस्त।
और दूसरी तरफ वो लिख रहे थे, भाई आज मैं जियो कल किसने देखा है। उनकी रुबाइयां इसी फलसफे से भरी हुई हैं।
तो आज हम इसी दिलचस्प शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी जिंदगी, उनका दौर क्या था, उनके विचार कितने गहरे थे,
और उनकी वो विरासत
जी
आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल। तो शुरुआत उनके दौर से करते हैं। ये समझना जरूरी है वो सेल्जुक साम्राज्य के वक्त में थे।
हाँ, सेल्जुक तुर्क।
इसे इस्लामी स्वर्ण युग का शिखर भी कहते हैं, और कुछ लोग शायद ढलान की शुरुआत भी।
हाँ, ये बहस रहती है, लेकिन ये तय है कि वो एक बड़ा उथल पुथल और साथ ही ज्ञान के विकास का भी समय था।
सेल्जुक तुर्क मध्य एशिया से आए थे और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था,
और निशापुर जैसे शहर वो तो उस वक्त ज्ञान विज्ञान के बड़े अड्डे थे।
बिल्कुल। बगदाद, इस्फहां, निशापुर, ये सब शहर उस वक्त दुनिया भर के ज्ञान को समेट रहे थे। सोचिए, यूनानी दर्शन, अरस्तु, प्लेटो का,
हाँ,
फिर भारतीय गणित, खगोल विज्ञान के सिद्धांत, और इस्लामी धर्मशास्त्र की अपनी परंपराएं, ये सब आपस में मिल रही थी।
टकरा भी रही होंगी। बिल्कुल टकरा रही थी, और इसी टकराव से नई चीजें निकल रही थी। सेल्जुक शासकों ने भी, खास तौर पर सुल्तान मलिक शाह प्रथम और उनके बहुत काबिल वजीर थे निजामुल मुल्क।
निजामुल मुल्क,
हाँ सुना है नाम।
हाँ, उन्होंने ज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया, मदरसे खोले, वेदशालाएं बनवाई, माहौल था एक तरह का।
लेकिन इसी माहौल में विचारों का टकराव भी तो रहा होगा।
जाहिर है, एक तरफ थे तर्कवादी जैसे इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसीना कहते हैं।
अच्छा, हाँ।
उनका मानना था कि बुद्धि और तर्क से ही सच तक पहुंचा जा सकता है, और खयाम काफी हद तक इसी धारा से प्रभावित लगते हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ थे इमाम अलगराली जैसे बहुत प्रभावशाली धर्मशास्त्री। वो मानते थे कि तर्क की सीमाएं हैं, असली ज्ञान तो आस्था से, ईश्वरीय अनुभव से मिलता है।
और मजे की बात यह है कि ये दोनों बड़े नाम खयाम के समकालीन थे।
बिल्कुल। अलगजाली के साथ तो खयाम की बौद्धिक बहस या प्रतिद्वंदिता की बातें भी होती हैं।
अच्छा, हाँ। और एक और कहानी चलती है कि खयाम, निजामुल मुल्क और हसने सब्बाह।
हसने सब्बाह,
ये वही असासिन्स वाले?
हाँ वही,
जो बाद में ऑर्डर ऑफ असासिन्स के संस्थापक बने। कहानी यह है कि ये तीनों बचपन के दोस्त थे, और इन्होंने वादा किया था कि जो भी कामयाब होगा वो दूसरों की मदद करेगा।
अरे वाह, दिलचस्प कहानी है, पर क्या ये सच है?
ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद बाद में जोड़ी गई कहानी है। उनकी उम्रों में भी फर्क था, पर यह कहानी दिखाती है कि उस दौर के बड़े दिमाग उनकी कहानियां कैसे आपस में जुड़ जाती थीं।
और इसी दौर में फारसी शायरी में रुबाई का चलन भी बढ़ रहा था।
हाँ, रुबाई, चार पंक्तियों की छोटी सी कविता, तुकबंदी होती थी आमतौर पर। एबी एबी
छोटी सी है, लेकिन खयाम ने तो इसमें जैसे दर्शन का समंदर भर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इसे दार्शनिक गहराई दी। अच्छा, उनके नाम पर आते हैं, अल खयामी।
हाँ, इसका क्या मतलब है?
इससे अंदाजा लगता है कि उनके पिता या शायद दादा परदादा खेमे बनाने का काम करते थे। खेमा मतलब टेंट, अरबी में खयाम का मतलब खेमा बनाने वाला।
ओह, तो मतलब कोई बहुत ऊंचे खानदान से नहीं थे।
ऐसा लगता है, पर उस वक्त एक सम्मानित पेशा था। और सबसे जरूरी बात कि साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें तालीम शिक्षा बहुत अच्छी मिली।
कहाँ पढ़े वो?
खुरासान के बड़े विद्वानों से, निशापुर में ही। कहते हैं इमाम मुवाफक निशापुरी जैसे बड़े आलिम उनके उस्ताद थे। उन्होंने कुरान, इस्लामी कानून, फलसफा, रियाजी यानी गणित, खगोल विज्ञान सब कुछ पढ़ा। इब्न सीना का दर्शन भी पढ़ा।
तो नींव बहुत मजबूत थी उनकी।
बहुत ज्यादा। और उनकी काबिलियत खासकर गणित में वो जल्दी ही जाहिर हो गई। वो फिर ज्ञान की तलाश में समरकंद गए, बुखारा गए।
ये भी उस वक्त ज्ञान के बड़े केंद्र थे।
हाँ, वहां उन्होंने बीज गणित यानी एलजेब्रा पर कुछ शुरुआती काम लिखा और इससे गणित के जो जानकार थे उनकी नजर में आ गए।
अच्छा।
और इसी शोहरत की वजह से फिर उन्हें इस्फहान बुलाया गया। बिल्कुल, करीब 1073 से 74 में सेल्जुक सुल्तान मलिक शाह ने उन्हें अपनी राजधानी इस्फहान बुलाया और ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था।
वहां क्या हुआ?
वहां जो वजीर थे निजामुल मुल्क, उन्होंने खयाम की काबिलियत को पहचाना और उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी।
क्या थी वो?
इस्फहान में एक नई बहुत आधुनिक वेदशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनानी थी। उसका नेतृत्व खयाम को सौंपा गया और साथ ही फारसी सौर कैलेंडर में सुधार करने का काम भी।
वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी थी।
ये उनके वैज्ञानिक जीवन का सबसे बेहतरीन दौर कहा जा सकता है। इस्फहान में उन्हें वो सब मिला जो एक शोधकर्ता चाहता है, संसाधन, सम्मान और एक बड़ा लक्ष्य।
और कैलेंडर वाला काम वो कैसा रहा?
वो तो कमाल का था। उन्होंने जो जलाली कैलेंडर तैयार किया अपनी टीम के साथ मिलकर, वो इतना सटीक था।
कितना सटीक?
आज जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा सटीक।
क्या बात कर रहे हैं, 11वीं सदी में?
हाँ, 100 वर्ष की लंबाई उन्होंने ज्यादा सटीकता से नापी थी। सोचिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर तो 500 साल बाद यूरोप में आया।
ये तो सच में कमाल है। एक तरफ ये वैज्ञानिक सटीकता और दूसरी तरफ उनकी रुबाइयों में जो गहरा शक संदेह झलकता है।
हाँ, यही विरोधाभास।
चलिए अब उनके विचारों और दर्शन पर आते हैं। उनकी रुबाइयों से ही उनके मन की झलक मिलती है। पर एक बात ध्यान में रखनी होगी।
हाँ।
कि आज उनके नाम से हजारों रुबाइयां मिलती हैं, पर क्या वो सब उन्होंने ही लिखी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्वान मानते हैं कि शायद 100-150 या ज्यादा से ज्यादा 200 रुबाइयां ही असल में उनकी होंगी, बाकी बाद में लोगों ने उनके नाम से जोड़ दी।
अच्छा, तो जो उनकी मानी जाती हैं उनमें क्या खास बात है?
उनमें आपको एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स, जो स्थापित मान्यताएं हैं, उन पर सवाल उठाने का साहस दिखेगा।
जैसे?
जैसे स्वर्ग नरक का विचार, भाग्य, ईश्वर का न्याय, इन सब पर वो संदेह करते नजर आते हैं। वो सर्टेंटी मतलब निश्चितता के बजाय डाउट, संदेह को ज्यादा अहमियत देते हैं।
और भविष्य के वादों के बजाय वर्तमान की हकीकत पर जोर।
बिल्कुल, उनके एक मशहूर रुबाई के मतलब कुछ ऐसा है, कल की बातें कल देखेंगे, आज तो हाथ में जाम उठा लें।
उनकी शायरी में ये एहसास भी बहुत गहरा है कि जिंदगी पल पल बीत रही है, क्षण भंगुरता।
हाँ, जीवन एक सराय है, हम मुसाफिर हैं, इस तरह की बातें। लेकिन ये उदासी मायूसी वाली नहीं है।
अच्छा?
नहीं, इसमें जीवन का जश्न भी है। शराब, रोटी, संगीत, किसी प्रिय का साथ, ये सब जिंदगी के जो छोटे छोटे ठोस सुख हैं उनके प्रतीक हैं।
हाँ, ये अक्सर आता है उनकी रुबाइयों में।
और साथ ही किस्मत या नियति की ताकत का भी जिक्र है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ पहले से तय है। शायद
एक तरह से देखा जाए तो वो अपने समय के तर्कवादी थे, रैशनलिस्ट।
हाँ, कह सकते हैं, जो हर चीज को बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहते थे, यहाँ तक कि धर्म और आस्था के रहस्यों को भी।
कुछ लोग तो उन्हें पहला बड़ा अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी कहते हैं।
हाँ, ये भी कहा जाता है, क्योंकि वो मानते थे कि इस दुनिया का कोई पहले से तय मतलब नहीं है, हमें खुद ही अपने जीवन का अर्थ खोजना है, और वो भी ये जानते हुए कि एक दिन सब खत्म हो जाना है।
उनका फलसफा कार्पे डायम जैसा लगता है, आज को जी भर के जियो।
बिल्कुल, असली जन्नत यही है, इसी दुनिया में अगर हम जीना सीख लें, ये कहना उस दौर में बहुत हिम्मत की बात थी।
और ये सिर्फ फलसफे की बातें नहीं थी, उनका विज्ञान में योगदान तो ठोस था,
बहुत ठोस। जैसा हमने कहा, बीजगणित में त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशंस,
हाँ,
उनको हल करने के लिए ज्यामिति का इस्तेमाल, ये यूनानी गणितज्ञों से बहुत आगे की बात थी। इसने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को एक नए तरीके से जोड़ा। उनका ग्रंथ है रिसाला फी अल बराहीन अला मसाइल अलजब्र व अल मुकाबला।
क्या नाम है, मतलब क्या है इसका?
मतलब बीजगणित की समस्याओं के प्रदर्शन पर ग्रंथ। ये एल्जेब्रा के इतिहास में एक मील का पत्थर है।
और यूक्लिड की ज्यामिति पर भी उन्होंने काम किया था, वो समानांतर रेखाओं वाली बात।
हाँ, यूक्लिड का पैरेलल पोस्टुलेट, पांचवी अभिधारणा, सदियों से गणितज्ञों से साबित करने की कोशिश कर रहे थे। खयाम ने उस पर बहुत गहरा काम किया। उन्होंने दिखाया कि अगर इस अभिधारणा को ना माने तो भी एक सुसंगत ज्यामिति बन सकती है। उनके इस काम ने आगे चलकर बहुत बाद में गैर यूक्लिडियन ज्यामिति, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के विकास की नींव रखी।
और उसका इस्तेमाल तो फिर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत वगैरह में हुआ।
बिल्कुल, तो गणित में उनका असर बहुत दूर तक गया, अनजाने में ही सही।
तो उनकी विरासत के दो मजबूत स्तंभ हो गए, एक तरफ विज्ञान।
हाँ, उनके प्रमाणिक वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथ, एल्जेब्रा वाला ग्रंथ, खगोल विज्ञान में ज़िजे मलिक शाही नाम की खगोलीय सारणियाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स।
ये इस्फहान वाली वेदशाला के काम पर आधारित थी।
हाँ, ग्रहों की स्थिति वगैरह की गणना के लिए, और इसी के आधार पर वो जलाली कैलेंडर बना था।
और दूसरा स्तंभ?
दूसरा स्तंभ वो रुबाइयां, जिनके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हुए। हालांकि जैसा हमने कहा, उन सबके रचयिता वही हैं ये पक्का नहीं,
पर है वो कमाल की, चार लाइनों में जिंदगी के बड़े बड़े सवाल।
हाँ, विषय वही है, जीवन नश्वर है, दुनिया की शानो शौकत बेकार है,
धर्म के नाम पे पाखंड,
ईश्वर की मर्जी समझना मुश्किल है, इसलिए बेहतर है आज में जियो,
शराब रोटी महबूबा ये प्रतीक।
हाँ, आवाज में शक है, थोड़ी उदासी है, लेकिन हार मानने वाली नहीं, जिंदगी को गले लगाने वाली है। जैसे वो रुबाई जिसका जिक्र अक्सर होता है।
कौन सी?
पेड़ के नीचे कविताओं की किताब हो, सुराही में शराब, रोटी का टुकड़ा हो, और तू मेरे पास बियाबान में गा रही हो, आहा ये बियाबान ही जन्नत है काफी।
वाह क्या बात है, मतलब असली खुशी, असली स्वर्ग वो भविष्य के किसी वायदे में नहीं है।
नहीं, वो आज के इन छोटे मगर सच्चे सुखों में है, प्यार, सुकून, कला, सादा भोजन, यही।
एक और रुबाई है जो ज्ञान की तलाश पर जैसे कटाक्ष करती है।
हाँ, वो भी बहुत मशहूर है।
जवानी में मैं अक्सर हकीमों और संतों के पास गया और बड़ी बहसें सुनी, इधर की और उधर की, पर हमेशा उसी दरवाजे से बाहर आया जिससे अंदर गया था।
हाँ, ये बड़ी गहरी चोट है। मतलब दुनिया भर के ज्ञानी, दार्शनिक, धर्मगुरु बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहसें करते हैं,
लेकिन जिंदगी के जो असली सवाल है
उनका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं। आप जहां से शुरू करते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। ये एस्टैब्लिश्ड नॉलेज सिस्टम्स की सीमाओं पर एक टिप्पणी है।
अगर उनकी तुलना करें उनके दौर के दूसरे बड़े नामों से, तो अल गजाली के साथ तो वैचारिक मतभेद साफ दिखता है।
हाँ, खयाम तर्क और संदेह के रास्ते पर, गजाली आस्था और रहस्यवाद के, वो उस दौर की बौद्धिक कश्मकश को दिखाते हैं।
और निजाम अल मुल्क और हसन सब्बा वाली कहानी
भले ही सच्ची ना हो, पर वो दिखाती है कि उस दौर में सियासत, धर्म, ज्ञान, ये दुनियाएं कैसे आपस में उलझी हुई थी।
उनकी शायरी भी उस वक्त की फारसी शायरी से अलग थी।
बिल्कुल, ज्यादातर शायर या तो सूफी रहस्यवाद में डूबे थे या फिर बादशाहों की तारीफ में लगे थे।
हाँ, कसीदे पढ़ रहे थे।
खयाम ने शक को, सवाल को, जिंदगी की हकीकतों को अपनी शायरी का विषय बनाया, ये नई बात थी।
अब आते हैं उनकी विरासत पर, लेगेसी।
ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
हाँ बहुत, अपने जीते जी और उसके बाद कई सदियों तक इस्लामी दुनिया में उमर खयाम को मुख्य रूप से कैसे जाना जाता था?
एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, उनकी रुबाइयां उस तरह मशहूर नहीं थी।
अच्छा, तो वो कैसे फैली?
वो शायद निजी तौर पर लिखी गई थी, धीरे धीरे लोगों के बीच फैली, पांडुलिपियों के जरिए पूर्वी दुनिया में वो एक किंवदंती जैसे बन गए, एक जीनियस वैज्ञानिक जिसके मन में धर्म से जुड़े गहरे सवाल उठते थे, जो दुनिया की रीतियों पर सवाल उठाता था, एक तरह से विद्रोही बुद्धिजीवी।
लेकिन पश्चिम में उनकी पहचान बिल्कुल अलग तरह से बनी।
हाँ,
और वो भी सदियों बाद।
हाँ, ये सबसे बड़ा मोड़ था। 1859 में एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड नाम के एक अंग्रेज कवि थे।
फिट्ज़जेराल्ड, हाँ,
उन्होंने खयाम की कुछ रुबाइयों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, या यूं कहें कि रूपांतरण किया, ट्रांसक्रिएशन। किताब का नाम था द रुबायात ऑफ उमर खयाम।
और इसमें उन्होंने क्या किया?
फिट्ज़जेराल्ड ने खयाम की मूल भावना को पकड़ा, खासकर उनका वो संदेहवाद, वो आज में जियो वाला दर्शन, और उसे विक्टोरियन इंग्लैंड के जो पाठक थे उनके लिए बहुत खूबसूरत रोमांटिक अंदाज में पेश किया।
और उसका असर क्या हुआ?
जबरदस्त, वो किताब पश्चिम में सनसनी बन गई, बेस्ट सेलर, जिसने खयाम को रातों रात एक रोमांटिक, रहस्यमयी, शराब और जिंदगी का जश्न मनाने वाले कवि के तौर पर मशहूर कर दिया।
मतलब वैज्ञानिक वाला पहलू तो जैसे गायब ही हो गया।
काफी हद तक दब गया पश्चिम में। ऑस्कर वाइल्ड, टी.एस. एलियट, कई बड़े लेखक, कलाकार इससे प्रभावित हुए। इसने पश्चिम में खयाम की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया।
और फिट्ज़रॉल के अनुवाद की कुछ पंक्तियां तो बहुत मशहूर हुई, जैसे वो चलती उंगली वाली।
हाँ बिल्कुल, द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग रिट मूव्स ऑन, नॉर ऑल दाई पायटी नॉर विट शैल ल्योर इट बैक टू कैंसिल हाफ अ लाइन, नॉर ऑल दाई टीयर्स वॉश आउट अ वर्ड ऑफ इट।
इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ?
के लिख कर आगे बढ़ जाती है चलती उंगली, न तेरी सारी पूजा न बुद्धि लौटा पाए उसे आधा अक्षर मिटाने, न तेरे सारे आंसू धो सके उसका एक शब्द।
वाह, मतलब नियति, भाग्य, जो लिखा जा चुका है वो बदला नहीं जा सकता।
हाँ, ये दिखाता है कि उनकी सोच में नियतिवाद का भी एक पहलू था, फेट।
तो आज उमर खयाम की विरासत दोहरी है।
बिल्कुल, विज्ञान के इतिहास में वो बीजगणित और कैलेंडर सुधार के लिए जाने जाते हैं, एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री,
और साहित्य की दुनिया में
फिट्ज़गेराल्ड की वजह से वो जिंदगी के मुश्किल सवालों पर सोचने वाली एक अमर आवाज बन गए हैं। मौत, अनिश्चितता, जीवन का अर्थ, उनके सवाल आज भी उतने ही ताजे लगते हैं। वो बौद्धिक आजादी का हिम्मत से सवाल पूछने का प्रतीक बन गए।
उनके बारे में कुछ और रोचक बातें भी हैं, शायद कम ज्ञात पहलू।
हाँ कुछ हैं, जैसे उन पर नास्तिकता या विधर्मी होने के आरोप लगे थे।
अच्छा।
हाँ, जिनसे बचने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा भी की थी, हज किया था।
ये पक्का पता है,
कहा जाता है, पुख्ता सबूत शायद ना हो। एक और दिलचस्प किस्सा है जो उनके एक शागिर्द थे निजामी अरूजी, उन्होंने सुनाया है।
क्या किस्सा है?
कहते हैं खयाम ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मेरी कब्र ऐसी जगह होगी जहां हर बहार में उत्तर की हवा उस पर फूल बिखेरेगी।
अरे वाह।
सालों बाद जब निजामी उनकी कब्र पर गए निशातुर में, तो देखा कि वो सचमुच एक बाग की दीवार के नीचे थी और बाग के आड़ू और नाशपाती के पेड़ों की टहनियां दीवार पर से झुककर कब्र पर इतने फूल बरसा रही थी कि कब्र फूलों में छिप गई थी।
क्या बात है, ये कहानी तो उनकी काव्यात्मक छवि को और गहरा करती है।
बिल्कुल, और ये याद रखना भी जरूरी है कि फिट्ज़गेराल्ड ने जो रोमांटिक छवि बनाई और असल के उमर खयाम, जो एक गंभीर वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे, उनमें शायद अंतर है।
हाँ ये तो है, पर ये भी सच है कि विज्ञान और कविता, तर्क और भावना दोनों उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थे।
बिल्कुल, और उनके सम्मान में आज चांद पर एक क्रेटर का नाम उमर खयाम क्रेटर है।
सच में?
हाँ, और एक छोटा ग्रह, एक एस्ट्रॉइड 3095 का नाम भी उमर खयाम रखा गया है।
ये तो बहुत बड़ी बात है, उस इंसान के लिए एक सही श्रद्धांजलि जिसने सितारों और ब्रह्मांड को समझने में अपनी जिंदगी लगा दी।
बिल्कुल।
वाकई उमर खयाम की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। एक इंसान जिसके पास ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने वाला वैज्ञानिक दिमाग था, समीकरण हल करता था, कैलेंडर बनाता था।
हाँ, सटीकता की तलाश।
और उसी इंसान के पास एक कवि का दिल था जो उसी ब्रह्मांड के रहस्यों पर, उसकी अनिश्चितताओं पर, जीवन की नश्वरता पर इतने गहरे सवाल उठाता था।
क्या ये दोनों नजरिए एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे को पूरा करते हैं?
ये बड़ा सवाल है।
आज की दुनिया में जहाँ हम हर चीज का पक्का जवाब चाहते हैं, फटाफट समाधान चाहते हैं, शायद खयाम हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की प्यास वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ जिंदगी के जो छोटे लम्हे भर के सुख हैं उनको महसूस करना भी जरूरी है।
संतुलन की बात।
हाँ, संतुलन, और शायद सबसे बड़ी बात, मुश्किल सवालों के साथ जीना सीख लेना, बिना किसी आसान जवाब के भी। क्या हम अपनी जिंदगी में वो संतुलन पा सकते हैं? तर्क और भावना के बीच, निश्चितता और संदेह के बीच, ज्ञान और आनंद के बीच।
ये सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।